दर्शन की आवाज़ में हिंदी भाषा डॉक्टर हरदीप बाहरी द्वारा लिखित का वाचन सुनिए। राजभाषा भूमिका। राजकाज चलाने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अपने समय में संस्कृत, पाली, महाराष्ट्री, प्राकृत अथवा अपभ्रंश राजभाषा रही। प्रमाणों से विदित होता है कि 11वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान राजस्थान में हिंदी मिश्रित संस्कृत का प्रयोग होता था। मुसलमान बादशाहों के शासनकाल में मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर के समय तक हिंदी शासन कार्य का माध्यम थी। अकबर के गृहमंत्री राजा टोडरमल के आदेश से सरकारी कागजात फारसी में लिखे जाने लगे। एक फारसीदान मुंशी वर्ग ने 300 वर्ष तक फारसी को शासन कार्य का माध्यम बनाए रखा। मैकाले ने आकर अंग्रेजी को प्रतिष्ठित किया। तब से उच्च स्तर पर अंग्रेजी और निम्न स्तर पर देसी भाषाएं प्रयुक्त होती रही। हिंदी प्रदेश में उर्दू प्रतिष्ठित रही, यद्यपि राजस्थान और मध्य प्रदेश के देसी राज्यों में हिंदी माध्यम से सारा काम काज होता रहा। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ साथ स्वभाषा को राजपद दिलाने की मांग उठी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महर्षि दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, राजर्षि पुरुषोत्तम दासचंद्र और बहुत से अन्य नेताओं ने जनसाधारण ने अनुभव किया कि हमारे देश की राजकाज की भाषा हमारी ही भाषा में होनी चाहिए और वह भाषा हिंदी ही हो सकती है। हिंदी सभी आर्य भाषाओं की सहोदरी है। यह सबसे बड़े क्षेत्र के लोगों, करीब 42% से ऊपर जनता की मातृभाषा है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी यह अधिकतर लोगों की दूसरी या तीसरी भाषा है। हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है और सभी भारतीय भाषाओं की अपेक्षा सरल है। इन विशेषताओं के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही हिंदी को भारत की सामान्य या संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता के बाद राज्यसत्ता जनता के हाथ में आई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया कि देश का राजकाज लोक की भाषा में हो, अतः राजभाषा के रूप में हिंदी को एकमत से स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। तब से राजकार्यों में इसके प्रयोग का विकास चक्र आरंभ होता है। संवैधानिक स्थिति। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में, अंग्रेजी में किया जाता है, परंतु यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपमन न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोक हो जा सकेगा। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने क्षेत्र या राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपमन न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। धारा 343। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक किया जाता रहेगा, परंतु राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। इसी धारा के अंतर्गत कहा गया है कि संसद 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या देवनागरी अंकों का प्रयोग किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकेगी। धारा 344। इस संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर क्या निर्बंध हो सकते हैं, न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली किस भाषा का क्या स्वरूप चलता रहे, किन प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप क्या हो और संघ की राजभाषा अथवा संघ और किसी राज्य के बीच भाषा अथवा एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा के बारे में क्या सुझाव हो। इसी प्रकार का आयोग संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर गठित किया जा सकेगा। यह प्रावधान भी किया गया कि वे आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों के न्याय संगत दावों और हितों का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक समिति अपनी राय राष्ट्रपति को देगी। इसके पश्चात राष्ट्रपति उस संपूर्ण रिपोर्ट के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश जारी कर सकेगा। धारा 345। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। धारा 346। संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेंगे तो उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। धारा 347, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इस निमित्त से मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। धारा 348, जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद का प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधायक विधेयकों अधिनियमों प्रस्तावों आदेशों नियमों विनियमों और उपविधियों एवं राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डिक्री या आदेश पर इस खंड की कोई बात लागू नहीं होगी। यह प्रावधान किया गया है कि इस खंड के किन्हीं बातों के लिए यदि अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा को प्राधिकृत किया गया हो तो अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। धारा 349, राज्यसभा से संबंधित संसद राज्य भाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। धारा 350, प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा हकदार होगा। अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो उन वर्गों के सभी विषयों से संबंधित रक्षा के उपाय करेगा और अपनी रिपोर्ट समय समय पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को देगा जिस पर संसद विचार करेगी। धारा 351 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी की और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। 8वीं अनुसूची में 15 भाषाएं गिना दी गई, असमिया उड़िया उर्दू कन्नड़ कश्मीरी गुजराती तमिल तेलुगु पंजाबी बंगला मराठी मलयालम संस्कृत सिंधी और हिंदी, परंतु अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। राजभाषा के प्रयोग की प्रगति, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग संसद और सरकार विशेषतया गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने आदेश सुझाव अधिनियम अनुदेश और नियम निर्धारित किए जिनके द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रपति का आदेश, 1955 में आदेश दिया गया कि जनता के साथ पत्र व्यवहार में प्रशासकीय रिपोर्टों प्रस्तावों संसदीय विधियों सरकारी संधि पत्रों और करारनामों अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों और अंतर्राज्यों के कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए। इस आदेश के अनुसार गृह मंत्रालय ने ज्ञापन द्वारा सरकार के सभी मंत्रालयों को कतिपय कार्यों में हिंदी का प्रयोग कर सलाह दी। यह भी कहा गया कि जनता से जो पत्रादि हिंदी में मिले उनके उत्तर जहाँ तक संभव हो हिंदी में ही दिए जाए, किंतु यह बात सरकारी रिपोर्टों विधियों आदि रूप में स्पष्ट रूप से लिख दी गई कि अंग्रेजी पाठ्य प्रमाणिक माना जाएगा। राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जिसके 21 सदस्य थे। इस आयोग ने हिंदी राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए उनके मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं। पहला, किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। दूसरा, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारी भारत का एक माध्यम है। तीसरा, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को आवश्यकता पड़े तो थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। चौथा, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। पांचवा, हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। छठा, प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंतर्गत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसा न करने वालों को दंडित न किया जाए, उत्साही कर्मचारियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाए। सातवां, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में प्रकाशित किए जाए। आठवां, संसद और विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। नवां, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। दसवां, प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। 11वां, यदि एक लिपि रखने का प्रश्न हो तब सब भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि सर्वथा उपयुक्त होगी। 12वां, हिंदी के विकास का उत्तरदायित्व सरकार की एक प्रशासनिक इकाई पर डालना चाहिए। 13वां, भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। खेद है कि आयोग के इन सुझावों के अनुसार सरकार ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 ईस्वी, आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद समिति ने जो सुझाव दिए उसमें से प्रमुख ये हैं। पहला, जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का ज्ञान प्राप्त न कर ले अंग्रेजी में कार्य करते रहे। 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट देनी चाहिए। तीसरा, जब तक हिंदी इस योग्य नहीं हो जाती कि तब तक संसद और राज्यों के विधानमंडलों में विधि निर्माण का कार्य चलता रहे, कानूनों का अंग्रेजी रूप प्राधिकृत माना जाए, उच्च न्यायालयों के निर्णयों, अभिलेखों और आदेशों का अंग्रेजी में ही होना चाहिए, एक विधायी आयोग का निर्माण किया जाना चाहिए, केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को चलने दिया जाए। चौथा, 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा और अंग्रेजी को सहभाषा का स्थान दिया जाए। पांचवा, सामान्य रूप से राजभाषा आयोग की सिफारिशों को मान लिया जाए। इन सुझावों का मतलब यही था कि अंग्रेजी राजभाषा बनी रहेगी। राष्ट्रपति का आदेश 1960 ईस्वी, राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किए उसके मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला, अखिल भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी रहे और कुछ समय बाद हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जिन कर्मचारियों की उम्र 45 वर्ष से कम है उनको हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य बनाया जाए। तीसरा, हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्णय के लिए एक अस्थायी आयोग स्थापित किया जाए। चौथा, सभी प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद किया जाए। पांचवा, एक मानव विधि कोष बनाया जाए और कानून संबंधी साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया जाए, उसके लिए एक विधायी आयोग की स्थापना की जाए। छठा, टंककों और आशुलिपिकों को हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा मंत्रालय बार बार हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करे और इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं की भी सहायता करे। राजकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय योजना तैयार करे। इस आदेश के तहत 2 आयोग स्थापित किए गए, अनुवाद कार्य होने लगा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होने लगी। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधित। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि 1965 से सारा सरकारी कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकार की नीति के कारण ऐसा नहीं हो सका। हिंदी क्षेत्रों में, विशेषतः बंगाल और तमिलनाडु में हिंदी का घोर विरोध हुआ। इसकी प्रतिक्रिया हिंदी क्षेत्र में हुई। इस भाषाई कोलाहल के बीच जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी क्षेत्रों की सम्मति प्राप्त की जाएगी और तब तक अंग्रेजी को हटाया नहीं जाएगा। इस आश्वासन को कानून के रूप में पुष्ट किया गया। इस अधिनियम के कुल 9 धाराएं थी। पहला, 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाती रहेगी जिनके लिए वह इससे पहले प्रयोग में लाई जाती रही है। दूसरा, जब तक कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हिंदी के साथ अंग्रेजी का और अंग्रेजी के साथ हिंदी का अनुवाद पत्रादि में किया जाए। तीसरा, संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, विज्ञापनों, करारों, संविधाओं, प्रशासनिक प्रतिवेदनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाना, निष्पादित करना और जारी करना अनिवार्य होगा। चौथा, धारा 3 के लागू होने के 10 वर्ष बाद राजभाषा के संबंध में एक समिति बनाई जाएगी जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करेगी। यह समिति 1977 में गठित की गई। पांचवा, राष्ट्रपति के अधिकार से राजपत्र में प्रकाशित किसी केंद्रीय अधिनियम आदि का हिंदी अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। छठा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के हिंदी पाठ या अनुवाद उनके प्राधिकृत पाठ माने जाएंगे। सातवां, उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकेगा। आठवां, केंद्रीय सरकार वैधानिक प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। नवां, धारा 6 और 7 के उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। संशोधन द्वारा यह कहा गया कि जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। संकल्प 1968, संसद के दोनों सदनों में पारित संकल्प को ज्ञापन द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला, हिंदी के उत्तरोत्तर विकास और प्रयोग के लिए सरकार एक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी जिसकी प्रगति की रिपोर्ट यह प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत करेगी। दूसरा, हिंदी के साथ साथ सरकार राज्यों की भाषाओं के समन्वित विकास के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगी। तीसरा, एकता की भावना के अंतर्गत हेतु भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र को लागू करेगी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा दक्षिणी भाषा और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा अंग्रेजी और हिंदी के अध्ययन का संबंध किया जाएगा। चौथा, केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों का ज्ञान आवश्यक होगा। परीक्षाओं में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम के रूप में मान्यता दिलाई जाए। राजभाषा नियम 1976, राजभाषा हिंदी संबंधी आदेशों, राष्ट्रपति के आदेशों, संसद की सिफारिशों, राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपा गया, जिसके अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई। बाद में यह अनुभाग स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 देखिए। इस धारा में दिए गए अधिकार के अधीन उक्त विभाग ने 12 नियम 1976 निर्धारित किए। आज भी इन्हीं नियमों के अनुसार सरकार की द्विभाषिक नीति का अनुपालन हो रहा है। नियमों का संक्षेप आगे दिया गया जा रहा है। ये नियम केंद्रीय कार्यालयों, केंद्रीय सरकार के नियमों और कंपनियों पर लागू होते हैं। देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया। क वर्ग के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, यह सारा क्षेत्र हिंदी क्षेत्र है। ख वर्ग के क्षेत्र पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार। ग वर्ग के क्षेत्र शेष सब राज्य अर्थात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी दक्षिण के राज्य। तीसरा, क क्षेत्र के केंद्रीय सरकार के अथवा राज्य सरकार के किसी कार्यालय को या व्यक्ति को हिंदी में ही पत्र लिखे जाए। यदि किसी को अंग्रेजी में पत्र भेजा जाए तो उसका हिंदी में अनुवाद भी भेजा जाए। ख क्षेत्र के कार्यालयों को समानता हिंदी में पत्र भेजे जाए। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाए तो हिंदी का अनुवाद अवश्य संलग्न किया जाए। यदि कोई किसी अन्य भाषा में पत्र व्यवहार चाहे तो पत्र के साथ हिंदी अनुवाद भेजे जाए। ग क्षेत्र के कार्यालयों को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाए। चौथा, क क्षेत्र के कार्यालयों में पत्रादि हिंदी में भेजने का अनुपात सरकार निर्धारित करती है। पांचवा, हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देने होंगे। छठा, सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ साथ निकाले जाएंगे और इसका उत्तरदायित्व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। सातवां, कोई व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो तो उस पर हिंदी में हस्ताक्षर है तब उसका उत्तर भी हिंदी में देना अनिवार्य है। आठवां, कोई कर्मचारी फाइल में टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है, उससे दूसरी भाषा में उसका अनुवाद नहीं मांगा जाएगा। जिन कार्यालयों में 80% कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर चुके हैं वहाँ हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने का आदेश दिया जा सकता है। नवां, जिस कर्मचारी ने मैट्रिक आदि परीक्षा में हिंदी ली थी अथवा वह यह घोषणा करे कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसको हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। दसवां, जिस कर्मचारी ने प्राज्ञ या प्राज्ञ के समकक्ष परीक्षा पास की हो उसे हिंदी में कार्य साधक समझा जाए। ऐसे कर्मचारी 80% हो तो उस कार्यालय का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। ग्यारहवां, केंद्रीय सरकार के सभी मैनुअल, संहिताएं, नियम, रजिस्टर, फॉर्म, नाम पत्र, सूचना पत्र, पत्र शीर्ष, लिफाफे और स्टेशनरी की मध्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। बारहवां, सरकारी नियमों और आदेशों का अनुपालन कराने और भाषा प्रयोग की जांच पड़ताल करते रहने का उत्तरदायित्व प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का होगा। 1976 के बाद राजभाषा विभाग का कार्य, विभाग की ओर से समय समय पर ज्ञापन निकाले जाते हैं जिसमें हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का कार्य निश्चित किया जाता है और जो केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, निदेशालयों, विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, कंपनी और उद्यमों पर लागू होते हैं। उदाहरण स्वरूप, सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जानी चाहिए। सभी अखिल भारतीय सम्मेलनों की कार्यसूचियां, टिप्पणियां और कार्यवाहियां तथा सरकारी बैठकों की कार्यसूचियां आदि हिंदी में भी तैयार की जाए। क क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन चेक हिंदी में हो। विभाग प्रतिवर्ष हिंदी के राजभाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्यक्रम निर्धारित करता है। इतने प्रतिशत कर्मचारी हिंदी का उपयोग करने लगे, इतनी टाइप मशीनें हिंदी में कार्य करने लगे, इतने टाइपिस्टों और आशुलिपिकों को प्रशिक्षित किया गया, जगह जगह प्रदर्शनियां आयोजित की जाए, हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए, टाइप और आशुलिपियों की प्रतियोगिताएं आयोजित करें, हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की झिझक दूर करने के लिए कार्यालयों के प्रधान हिंदी कार्यशालाओं की स्थापना करें, राजभाषा हिंदी के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए इत्यादि। राजभाषा विभाग केंद्रीय हिंदी समिति और मंत्रालयों की हिंदी समितियों को बैठकों का आयोजन करके उसमें तालमेल बिठाता है। नगर राजभाषा क्रियान्वयन समितियों की रिपोर्टों के आधार पर कार्य निर्धारित करता है। तकनीकी और विधि क्षेत्र में हिंदी की प्रगति का लेखा जोखा रहता है। विभाग के निदेशक और निरीक्षक देश भर के कार्यालयों में जाकर वहाँ हिंदी के उपयोग की गतिविधि आंककर सलाह देते हैं और सरकारी कार्यालयों, उपक्रम के अधिकारियों का सम्मेलन बुलाकर उनकी कठिनाइयों का दूर करने का प्रयत्न करते हैं इत्यादि। विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी कक्षाएं चलाई जा रही है। इसके लिए 3 पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में 55-60% अंक पाने वालों को 50-50 रुपये, 60-70% अंक वालों को 100-100 रुपये और 70% से ऊपर अंक वालों को 200-200 रुपये पुरस्कार दिए जाते हैं। उनकी वेतन वृद्धि भी की जाती है। अनुवाद कार्य, संवैधानिक साहित्य अर्थात केंद्रीय अधिनियमों नियमों विनियमों आदि का हिंदी अनुवाद विधि मंत्रालय का विधायी विभाग कर रहा है। इस समय तक इसने लगभग 1000 नई पुरानी सब तरह की विधियों के अनुवाद कर डाले हैं। संसद में पेश होने वाले विधेयकों की हिंदी अनुवाद पहले से तैयार करके पेश किए जाते हैं। प्रशासनिक प्रकार के सभी मैनुअलों सूचनाओं नियमों फार्मों आदि का अनुवाद पहले हिंदी निदेशालय करता था, अब यह कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो करता है। ब्यूरो सरकारी उपक्रमों प्रतिष्ठानों बैंकों की सामग्री का अनुवाद भी करता है। अनुवादकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी इसके जिम्मे है। अनेक मंत्रालय विभाग और उपक्रम भी अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इस काम में लगे हैं। इसमें रेल मंत्रालय का कार्य विशेषता उल्लेखनीय है। शिक्षा मंत्रालय राजभाषा के प्रचार की बात हो तो चाहे राजभाषा की हिंदी भाषा की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उसका हिंदी निदेशालय कुछ कार्य करता आ रहा है, जिससे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों का निर्माण और प्रकाशन, विश्वविद्यालयों के लिए अनेक उच्च विषयों में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन और प्रोत्साहन, त्रिभाषी कोषों का निर्माण, स्तरीय पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद, हिंदी प्रदेशों के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण, उनके लिए हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम का निर्माण, परीक्षाएं और हिंदी प्रदेश के अध्यापकों और विद्यार्थियों का हिंदी प्रदेश में आकर भाषा का मानक ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था, व्याख्यान मालाओं का संयोजन, राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा, समस्याएं और उसका समाधान। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकाल में हिंदी के व्यवहार को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया गया और बहुत कुछ किया जा रहा है, परंतु यह सब कुछ कितने वर्षों में हुआ है? जब सन 1815 में जर्मनी स्वतंत्र हुआ था, बिस्मार्क ने आदेश दिया कि एक वर्ष के भीतर सभी राज कर्मचारी अपना अपना कार्य जर्मन भाषा में करने लगे, जो नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक वर्ष में ही जर्मन राजभाषा बन गई। 1917 में रूस की क्रांति हुई, तब पहला काम यही किया गया कि जर्मन का प्रयोग हटाकर रूसी भाषा को प्रतिष्ठित किया गया। इजराइल की हिब्रू भाषा 2000 वर्ष संस्कृत की तरह न बोलचाल की भाषा रह गई थी, न शिक्षा की, न शासन की। जब इजराइल स्वतंत्र राष्ट्र बना तो यहूदियों ने अपनी मृतप्राय भाषा को पुनर्जीवित किया और देखते देखते वह वहाँ की राजभाषा बन गई, राष्ट्रभाषा बन गई, शिक्षा विज्ञान प्रविधि विधि विज्ञान सब का माध्यम बनकर प्रतिष्ठित हो गई। किंतु हिंदी कोई मातृभाषा नहीं थी, स्वाधीनता से पहले कई देशी रियासतों की राजभाषा थी। भारत भर में शिक्षा का माध्यम थी, उसमें प्रचुर ललित और उपयोगी साहित्य था, फिर 15 वर्ष के लिए इसे क्यों टाल दिया गया? इसके पीछे कई तरह के षड्यंत्र थे। सबसे बड़ा घातक षड्यंत्र अंग्रेजी के पक्षधरों और पोषकों का था। अंग्रेजी का पक्ष, सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि सब लोग इस बात से सहमत है कि भारत के इस भाग में नेटिव जो बोलियां बोलते हैं उसमें साहित्यिक और वैज्ञानिक जानकारी की बातें नहीं है। इसके अलावा वे इतनी दरिद्र अनगढ़ है कि जब तक इन्हें किसी और दिशा से समृद्ध न किया जाए उनमें किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद करना भी संभव न होगा। भारतीयों का बौद्धिक विकास किसी ऐसी भाषा द्वारा ही संभव है जो उनमें न बोली जाती हो। कोष्टक में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे हैं। यह विचारधारा पिछले 150 वर्षों से अंग्रेजी वादियों में बराबर उठती रही। डलहौजी और कर्जन से लेकर नेहरू तक मैकाले के शब्दों को दोहराते रहे। अंग्रेजी की महत्ता को उभारने के लिए कहा जाता है कि अंग्रेजी संसार की भाषाओं में सबसे बड़ी भाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी विश्व ज्ञान की खिड़की है, अंग्रेजी पढ़कर हमें राष्ट्रीयता और स्वाधीनता की भावना जगी, देसी भाषाओं को अपनाने से भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता अथवा भावैक्य को बनाए रखने के लिए अंग्रेजी एकमात्र साधन है, अतः अंग्रेजी भारत की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी की सहायता के बिना भारतीय भाषाओं का विकास संभव नहीं, अंग्रेजी समृद्ध और श्रेष्ठ भाषा है इत्यादि। टैगोर ने ऐसे ही लोगों को लक्ष्य करके कहा था, हमने अपनी आंखें खोकर चश्मे लगा लिए हैं। अकबर इलाहाबादी ने बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा था, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जवान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, उन्हीं की मजमू उन्हीं का कागज, कलम उन्हीं की दबात उनकी। अंग्रेजी संसार की सबसे बड़ी भाषा नहीं है, 9% कुल जनसमूह की अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी नहीं कहला सकती। यह भाषा विश्व ज्ञान की खिड़की उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने एकमात्र अंग्रेजी सीखी है। रूसी, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत आदि अनेक खिड़कियां हैं जिनसे ज्ञान का प्रकाश आ सकता है। किसी स्वतंत्र राष्ट्र की राजभाषा कोई विदेशी भाषा नहीं है, भारत एकमात्र अपवाद है, जापान और रूस ही नहीं, सारे देश अपनी अपनी भाषा के माध्यम से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा तुलसी के भाषा से होगी। अंग्रेजी के प्रसार के कारण भारत में पतन की जो प्रगति हुई है और हो रही है वह सबके सामने। अंग्रेजी नर्सों के हाथ पला हुआ भारतीय अभारतीयों का एक दल दीर्घ काल से इस देश की स्वाभाविक प्रगति में रोड़ा बना हुआ है। इसी दल के नेताओं ने 1963 और 67 में राजभाषा अधिनियम द्वारा अंग्रेजी को सदा सदा के लिए भारत की राजभाषा बना दिया है। सोचा था कि 1950 से 15 वर्ष बीतने पर हिंदी अपने संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगी। थोड़े से अंग्रेजी दानों की सुविधा के लिए जनतांत्रिक शासन के व्यवहार अंग्रेजी में चलाना सर्वसाधारण के हितों की अवहेलना करना है। बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु या नागालैंड को आश्वासन दिया था कि जब तक आप चाहेंगे अंग्रेजी राजभाषा बनी रहेगी। आश्चर्य है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वचन गांधी के चेले भूल गए और चाचा नेहरू की बात पर फूल चढ़ा दी। गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजी के व्याह मुंह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का एक अनिवार्य अंग है। यदि मैं तानाशाह होता, मेरा बस चलता, तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा दिया जाना बंद कर देता। सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों ना हो, मैं इससे इसी तरह चिपटा रहूंगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से। यदि मुझे जीवन दायरी दूध दे सकती है, अगर अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं, तो मैं उससे सख्त नफरत करूंगा। वह कुछ लोगों के सीखने की वस्तु हो सकती है, लाखों करोड़ों की नहीं। हम चाहते हैं कि राजकार्य के लिए अपने देश की भाषाओं का व्यवहार हो, राज्यों में अपनी अपनी भाषा और पूरे देश के लिए एक भाषा जिसे संविधान ने मान्यता दी है। जो राज्य अंग्रेजी चाहते हो, यदि उन्हें इससे इतना मोह है, तो वे खुशी से अंग्रेजी में कामकाज चलाएं। परंतु जो राज्य अंग्रेजी नहीं चाहते, उन पर अंग्रेजी क्यों लादी गई है और लादी जाती रहेगी। 1963 और 67 के राजभाषा अधिनियम को निरस्त करके इतना कुछ अधिनियमित किया जा सकता है कि तमिलनाडु या मिजोरम अथवा नागालैंड या कोई भी राज्य चाहे अपना कार्य अंग्रेजी में करे, केंद्रीय सरकार भी उनसे उसी भाषा में पत्र व्यवहार करे। बस हिंदी का विरोध सबसे अधिक तमिलनाडु में है। वहां के राजनीतिवादियों ने हिंदी विरोध को चुनाव का मुद्दा बना रखा है। वहां के नेता लोगों को भड़काते हैं कि हिंदी हो जाएगी तो हम दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे, हिंदी वालों को ही नौकरियां मिलेंगी हमें नहीं, तमिल में हिंदी के प्रयोग आम मिलेंगे तो हमारी भाषा दूषित हो जाएगी इत्यादि। यह झूठा प्रचार करके वे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यदि वे तमिल का समर्थन करते तो बात समझ में आती, परंतु वे अंग्रेजी का समर्थन करते हैं। मानो अंग्रेजी में तमिल भले ही दूषित हो जाए या अंग्रेजी पढ़े लिखे उनसे बाजी मार ले जाए तो कोई बात नहीं। इस प्रकार राजभाषा हिंदी तमिल नेताओं की राजनीति में फंसी है। यदि पूरे देश के साथ न्याय करने की बात उनसे की जाए तो भारत से अलग स्वतंत्र देश रविस्तान बना लेने की धमकी देते हैं। हिंदी का विरोध करने वालों में नौकरशाही व्यवस्था के वे अधिकारी भी है जिन्हें केवल अंग्रेजी आती है और जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कॉलेजों से निकलकर इसी भाषा के बल पर अखिल भारतीय सेवाओं में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण उनको विशेष या कहें अनुचित लाभ मिल जाता है। वे अंग्रेजी के कट्टर पक्षधर होते हैं और अपने कर्मचारियों को हिंदी में काम करने पर हतोत्साहित करते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि हिंदी प्रदेश के राज्यों में भी उच्चाधिकारी हिंदी का उपयोग पूरे तौर पर नहीं करते। संघीय सरकार की उपेक्षा। भारत संघ की सरकार ने संविधान द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना की है। संविधान की धारा 344 में स्पष्ट कहा गया है कि 1950 के बाद हर 5 वर्ष पर एक आयोग का गठन किया जाता रहेगा जो राजभाषा हिंदी की प्रगति का जायजा लेगा और आगे की चलन वृद्धि के लिए सिफारिशें करेगा। एक ही आयोग 1955 में गठित किया गया, उसकी नकारात्मक सिफारिशों को माना गया लेकिन सकारात्मक सिफारिशों की अनदेखी कर दी गई। बाद में 1960 या 65 में आयोग नहीं बने, इसकी चिंता किसी को नहीं हुई। शिक्षा और राजकार्य की भाषा का पक्ष एक ही है। जब से राजभाषा अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी को दृढ़ता से स्थापित कर लिया गया, तब से राज कर्मचारियों को विश्वास हो गया कि अंग्रेजी का भविष्य उज्ज्वल है। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग 1.5% थे, अब 3% से अधिक हो गए हैं। हर मोहल्ले में अंग्रेजी स्कूल खुला है। राज कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना है। हिंदी सीखने पर उन्हें छुट्टी मिलती है, भत्ते और पुरस्कार मिलते हैं और उनकी वेतन वृद्धि होती है, परंतु वे काम अंग्रेजी में ही करते हैं। राष्ट्रपति का आदेश है कि यदि कोई राज कर्मचारी हिंदी में काम न करे तो उसका अहित नहीं होगा। आदेश यह होना चाहिए था कि हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत यदि कोई कर्मचारी हिंदी में काम नहीं करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा, उसकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। संविधान की धारा 351 में संघीय सरकार ने आदेश दिया है कि वह हिंदी की प्रकृति को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत की अन्य भाषाओं से आवश्यक शब्द और प्रयोग लेकर उस देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बनाने के लिए इसका विकास करे। पूछा जा सकता है कि सरकार ने इस दिशा में क्या कार्य किया है। बताया जाता है कि ज्ञान विज्ञान संबंधी शब्दावलियों के संपादन करने का काम वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को दे रखा गया है। कानूनी शब्दावली का संपादन करने और कानूनों का अनुवाद करने के लिए विधायी आयोग और अब न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग करता रहा है और नियमावलियों प्रशासकीय संहिताओं और दूसरे कागजातों का अनुवाद करने के लिए अनुवाद ब्यूरो लगा हुआ है। सवाल यह है कि नवीकरणों में कितना कुछ काम किया है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का मुश्किल से एकाध शब्द संग्रह 10 साल के अंदर प्रकाश में आ पाता है। अनुमान किया जाता है कि इस आयोग द्वारा संग्रहित या संपादित एक एक शब्द पर 5,000 रुपया खर्च पड़ता है। लगभग यही बात अन्य अभिकरणों के बारे में सही है। हिंदी का काम करने की चाह नहीं है। जो काम हुआ है उसके बारे में समीक्षकों का कहना है वह द्रुह और भद्दा है।
अनुवाद की अपेक्षा अंग्रेजी का मूल पाठ सरल और सुबोध है। यह काम संविधान की धारा 351 के अनुकूल भी नहीं है। इसमें संस्कृत ही संस्कृत है, वह भी अत्यंत कठिन। देश की अन्य भाषाओं से कुछ लेने की योग्यता इन अभिकरणों में नहीं है। 1976 में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग नियम और आदेश जारी करता रहता है, लेकिन अंग्रेजी दान अधिकारी इसकी कोई परवाह नहीं करते। वार्षिक कार्यक्रम बनते हैं, परंतु वे कागजों पर ही बने रह जाते हैं। हिंदी की प्रगति को देखने के लिए केंद्रीय हिंदी समिति है, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। उन्हें राजभाषा के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती और वर्षानुवर्ष इस समिति की बैठक ही नहीं होती। मंत्रालयों की अपनी अपनी सलाहकार समितियां हैं, जो थोड़ी बहुत सलाह तो देती है, पर उस पर क्रियान्वयन कहाँ होता है। अब बड़े बड़े नगरों में क्रियान्वयन समिति बनाई गई है, जिनके पास सोचने विचारने के लिए कार्यालयों से जानकारी ही नहीं पहुंचती। झूठे तथ्य और झूठे आंकड़े पहुंचते हैं। कुल मिलाकर संविधान ने जो कार्य सरकार को सौंपा था, उसे दिखावे के लिए भले किया गया हो, परंतु इस कार्य में गति नहीं, अंग्रेजी का ही बोलबाला है। हिंदी भाषा का भविष्य पिछले 2-3 पृष्ठों में स्पष्ट किया गया है कि राजभाषा की वर्तमान स्थिति क्या है। संविधान ने जिसको रानी बनाना चाहा था, उसे अधिनियम में अंग्रेजी की सहचरी बनाया, और इस समय सरकार ने उसको इसी विदेशी भाषा की चेरी बना रखा है। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की भाषा ही राजभाषा हो, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु हमें अंग्रेजी को हटाना होगा। इसके रहते यह हिंदी ही नहीं, हमारी कोई भी प्रादेशिक भाषा पनप नहीं सकती। यह सत्य पिछले 250 वर्ष का इतिहास बता रहा है। यह बात अच्छी तरह समझ में आती है कि 1963 का अधिनियम हिंदी के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसे निरस्त करा देना अभिष्ट है, परंतु हमें अलगाववादी शक्तियों से सावधान रहना है। देश की एकता प्रमुख है, हमें तमिलनाडु और दूसरे प्रदेशों की जनता को आश्वस्त करना है। नेताओं की तरह हिंदी नहीं लादी जाएगी, हिंदी लादी नहीं जाएगी कवाद दोहराते रहने से काम नहीं चलेगा। हमें व्यवहारिक रूप से दिखाना पड़ेगा कि हिंदी देसी भाषाओं की होड़ में नहीं खड़ी है। हमें और हमारे नेताओं को विशेषतः एकाधिक हिंदी भाषा सीख लेनी चाहिए। वे तमिलनाडु में जाकर तमिल में भाषण दें, केरल में मलयालम में, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु में बात करें, और बंगाल में बंगाली में, तथा गुजरात में गुजराती बोले, तो उन लोगों के मन में भी हिंदी के प्रति सद्भावना का संचार होगा। भारत सरकार की सलाहकार समितियों को सक्रिय करना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी का व्यवहार ज्ञान अनिवार्य है। अखिल भारतीय सेवाओं में जो लोग भर्ती होते हैं, उन्हें भी हिंदी सीखनी पड़ती है। उन सब के लिए सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग भी अनिवार्य होना चाहिए। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा, परंतु उन्हें शिकायत है कि विभागों के अध्यक्ष उनकी नीति को चलने नहीं देते। उनके निर्देश प्रतिवर्ष उसी रूप में दोहराए जाते हैं, उसका पालन नहीं होता। क्रियान्वयन समितियां परिश्रम से सही सही तथ्य और आंकड़े गृह मंत्रालय को भेजे, और वहां देखा जाए कि कहां कहां किन किन कार्यालयों में आदेशों की अवहेलना की जाती है। ऐसे कार्यालयों के अध्यक्षों को दंडित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे आवश्यक बात यह है कि हिंदी प्रदेश में सभी राज्यों में सारा काम हिंदी में हो, इसके शुभ लक्षण दिखाई देने लगे हैं। यह भी वांछनीय है कि केंद्रीय और प्रशासनिक लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग में भी प्रादेशिक भाषाओं को उचित स्थान दे, अंग्रेजी मात्र वैकल्पिक विषय के रूप में रहने दी जाए। समाप्त।